जैसे ही रात के 12 बजे दीवा ने आर्यांश को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और साथ ही उसे ये भी कहा था कि आज के बाद वो कभी उसके सामने ना आए। आर्यांश भी इस वक्त दीवा से कोई बहस नहीं की और वो बाहर आ गया था, और तभी उसकी मुलाकात सहर से हुई। आर्यांश ने सहर से कितना भी सच छुपाने की कोशिश कर ली, लेकिन अब सब कुछ उसके सामने आ गया था। आर्यांश अब उससे प्यार नहीं करता था, इस बात से ज्यादा बुरा सहर को इसका लग रहा था कि दीवा और आर्यांश ने उससे सच छुपा कर रखा। ऊपर से उनके बीच प्यार भी नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था, ये सब आर्यांश की साजिश का हिस्सा था, और ये सुनने के बाद सहर अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। दीवा ने भी आर्यांश की गलतियों को माफ करने से मना कर दिया था। उससे मिलने के बाद सहर वहां से चली गई, लेकिन आर्यांश अभी भी वहीं पर था। सुबह होते ही आर्यांश दीवा से मिलने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी का कॉल आते ही आर्यांश को तुरंत कपूर इंटरनेशनल्स जाने के लिए निकलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सहर अभी भी वर्तिका के घर पर रहती थी। उसने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। आर्यांश दीवा से प्यार करता था और अब वहां रुकने के लिए उसे कोई कारण नजर नहीं आया, तो सहर जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी। वो अपने लगेज के साथ कमरे से बाहर निकली तो वर्तिका उसे देखकर हैरान रह गई, लेकिन साथ ही वर्तिका ये भी जानती थी कि सहर को अब दीवा और आर्यांश के रिश्ते का सच पता चल गया है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? वर्तिका ने सहर की तरफ देखकर मायूस स्वर में कहा। रुकने की अब कोई वजह भी तो नहीं? सहर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और वर्तिका के गले लग गई थी। क्या इतनी वजह काफी नहीं है कि पिछले 1.5 महीने में हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई है? क्या तुम्हारे लिए आर्यांश ही मैटर करता है, मैं नहीं? वर्तिका सहर से अलग होकर बोली। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सहर उसे छोड़कर जा रही थी। सहर ने वर्तिका के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो और बचपन से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। कुछ पल रुककर उसने उदास चेहरे के साथ आगे कहा, पर सच तुम भी जानती हो, मुझे अब किसी पर और बोझ नहीं बनना है। और सच कहूं तो मैं आर्यांश की वजह से ही तुम्हारे साथ रह रही थी। ऐसा नहीं है कि आर्यांश के अलावा हमारे बीच कोई बॉन्ड नहीं है। मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती हूं। लेकिन तुम कहां जाओगी? तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं है, और वर्तिका परेशान चेहरे के साथ बोली और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। उसके बिना कहे ही सहर सब कुछ समझ गई थी। उसके होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई और वो सिर हिलाकर बोली, मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूं। हां, वे मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन वैसे भी मुझे जिंदा देखकर कौन खुश हुआ था? जैसे बाकी लोग समझे, वैसे धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ जाएगा। वर्तिका सहर को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके आगे कुछ कहने से पहले ही सहर बोल पड़ी, अब कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हें बार बार मना करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और तुम अच्छे से जानती हो मेरा जमीर मुझे यहां रहने के लिए कभी इजाजत नहीं देगा। ठीक है, तो प्रॉमिस करो कि तुम रोज मुझे कॉल करोगी और मुझसे मिलने भी आओगी, वर्तिका ने भारी आवाज में कहा। सहर ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वो जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही सहर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ठीक है, फिर हमारी दोस्ती के लिए तुम एक ब्रेकफास्ट तो मेरे साथ कर ही सकती हो। तब तक मैं श्रेष्ठ को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आ जाएगा। अब प्लीज मना मत करना, वर्तिका ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, तो सहर को मानना पड़ा। सहर के हाँ कहते ही वर्तिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सहर को डाइनिंग एरिया में भेजा और श्रेष्ठ को वहां आने के लिए बोल दिया था। उन तीनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और फिर श्रेष्ठ सहर को अपने साथ लेकर जाने लगा। जाने से पहले सहर ने नम आंखों से उस घर की तरफ देखा जहां उसने पिछले 1.5 महीने बिताए थे। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लगता है जैसे बहुत वक्त बीत गया और इन 5 सालों में सब आगे बढ़ गए। हाँ, बस मैं ही यहीं पर अटक कर रह गई। कोशिश करूंगी कि मैं इस गैप को पूरा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। सहर वहां से चली गई थी और साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि उसे अलविदा कहने के लिए आर्यांश वहां पर मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश कपूर इंटरनेशनल्स पहुंच चुका था। वहां पहले से ही पृथ्वी, मनीष और समीक्षा उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सार्थक भी वहीं पर था। जैसे ही आर्यांश अपने केबिन में पहुंचा, वे सब तुरंत खड़े हो गए थे। उन सबके चेहरे के भाव बेहद सख्त थे और आर्यांश को ये पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि वे उससे नाराज क्यों हैं। आगे बढ़ने से पहले सार्थक और आर्यांश की नजरें जा टकराई थीं और सार्थक ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया था। इस मामले में अब वो चाहकर भी आर्यांश की मदद नहीं कर सकता था। आर्यांश सीधा पृथ्वी के सामने जाकर खड़ा हो गया था। अक्सर वो जब भी उनसे बात करता था तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पूरे घमंड से बात करता था, लेकिन आज आर्यांश की नजरें झुकी हुई थीं। उसे देखकर पृथ्वी ने कड़वाहट से सिर हिलाया। तो उस दिन पार्टी में जो भी सौरभ कह रहा था वो सच था? पृथ्वी कपूर ने सीधे सीधे पूछा। आर्यांश ने बिना कुछ कहे हां में सिर हिला दिया था।
उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। तुम जानते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता था जब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर पूरे घमंड से बात करते थे, लेकिन साथ ही खुद पर गर्व भी महसूस होता था। आज तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर तुमसे ज्यादा शर्म मुझे आ रही है, पृथ्वी कपूर ने दांत पीसते हुए कहा। समीक्षा ने मनीष की तरफ इशारा किया ताकि वो सब कुछ संभाल ले, लेकिन मनीष ने नामे सिर हिला दिया था। अगर आर्यांश ने गलती की थी तो उसके बड़ों का उसे सजा देने का भी पूरा हक था। क्या सच में तुमने पैसे देकर उस लड़की को अपने साथ रहने के लिए कहा था और फिर वो तुम्हारे साथ रहते हुए प्रेग्नेंट हो गई थी? मुझे सच सुनना है, पृथ्वी कपूर ने आगे पूछा। मैंने उसकी हेल्प की थी और मैं झूठ नहीं बोला था। हम सच में 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर थे। साथ रहते हुए हमें प्यार हो गया था और मैंने उसे प्रपोज किया था। मैं उसे पहले से जानता था और बोलते हुए आर्यांश रुक गया था। उससे ये कहते तक नहीं बन रहा था कि वो दीवा से बदला लेने के लिए उसके पास आया था। और क्या आर्यांश, आगे बोलो, मनीष ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। मुझे लगता था कि उसकी वजह से शहर की मौत हुई है और मैं बस उससे बदला लेना चाहता था। तब मैंने वो सब किया, पर यकीन मानिए अब मैं उसे प्यार करता हूँ, आर्यांश ने जवाब दिया। और आखिरी लाइन बोलते हुए उसने पृथ्वी की आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, पृथ्वी ने उसके गाल पर कसके थप्पड़ लगाया। आर्यांश आंखों में हैरानी लिए उनकी तरफ देख रहा था, तो वहीं समीक्षा की मुठ्ठियां भी कस गई थीं। पृथ्वी की आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने आर्यांश की तरफ वार्निंग फिंगर दिखाते हुए सर्द आवाज में कहा, अब तुम उससे प्यार करते हो, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें बदला नहीं लेना या सबको अपने पैसों का रौब नहीं दिखाना? आर्यांश कपूर, शहर जिंदा है, आर्यांश ने कहा, जिसे सुनकर पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगे थे।
अच्छा, तो उस लड़की के जिंदा होने का सच जानने पर अचानक तुम्हें एहसास हो गया कि अब बदला लेने के लिए कुछ बचा नहीं है और तुम्हें उसे प्यार हो गया है? मैंने सब पता कर लिया है। गोयंका फैमिली के साथ जो स्कैम हुआ वो तुमने किया, और उस लड़की को हॉस्पिटल से निकलवाने के लिए तुमने उस पेशेंट की फैमिली को पैसे दिए थे जिसकी सर्जरी उस दिन उस लड़की ने की थी। बहुत अजीब है तुम्हारा प्यार जो उसे तकलीफ देकर हासिल करना चाहते हो। और किस बात का घमंड है तुम्हें? कपूर फैमिली के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और इसी पोजीशन के चलते तुम सबको अपने पैरों के नीचे दबाना चाह रहे हो, पृथ्वी ने दांत भींचते हुए कहा। उनकी बातें आर्यांश को आईना दिखाने के लिए काफी थीं। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई थी और आर्यांश के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ पल रुकने के बाद आर्यांश ने पृथ्वी की तरफ देखकर विनती भरे स्वर में कहा। बेशक सब ठीक होगा और मैं इस तरह कपूर इंटरनेशनल्स पर किसी तरह का दाग लगने भी नहीं दूंगा, लेकिन जो भी ठीक करना है वो मैं करूंगा। फिलहाल के लिए तुम इतना एहसान करो कि इन सबसे दूर रहो, पृथ्वी ने आर्यांश को चेतावनी दी। आर्यांश ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था। उसने सख्त आवाज में कहा, मैं दीवा से प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने सबके सामने उस लड़की को ठुकराया था, और हिम्मत थी तो उसी दिन सबके सामने उसका हाथ पकड़ते और मुझसे लड़ते, तब शायद मैं समझ जाता कि तुम उससे प्यार करते हो। अब जो कर रहे हो वो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। वे किसी भी तरह से आर्यांश पर नरमी नहीं दिखा रहे थे। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं, आर्यांश बोला। उसकी बात सुनकर पृथ्वी जोर से हंसे और बोले, अच्छा तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता? तुम्हारी मजबूरी की शुरुआत अभी हुई कहाँ है आर्यांश कपूर? और अब तुम्हें समझ में आएगा कि मजबूर होना किसे कहते हैं। जाकर उस लड़की से पूछना जिसे तुमने मजबूर किया था। पृथ्वी आर्यांश के साथ अब और बहस करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सार्थक की तरफ इशारा किया और सार्थक तुरंत कुछ पेपर्स लेकर उनके पास आ गया था। पृथ्वी ने वे पेपर्स डेस्क पर पटकते हुए आर्यांश की तरफ देखकर कहा, साइन करो इन पर। ये क्या है? आर्यांश ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम खुद पढ़े लिखे हो, इसे पढ़ सकते हो, बाकी तुम्हें इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो मैं बता देता हूँ, पृथ्वी ने कड़े शब्दों ने जवाब दिया। और फिर पेपर्स को आर्यांश के हाथ में थमाते हुए बिना किसी भाव के बोले, मुझे हमेशा से तुम पर गर्व था, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में हमारे पूरे बिजनेस को अच्छे से सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उन्हें कामयाबी की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। लेकिन सच कहूं तो अगर मुझे पहले पता होता कि इस कामयाबी की ये कीमत होती है तो मुझे ये कभी मंजूर नहीं होती। इन पेपर्स पर साइन करने के बाद तुम ऑफिशियली कपूर इंटरनेशनल्स के सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहे हो। सार्थक इस बारे में पहले से ही जानता था क्योंकि ये पेपर्स उसी के जरिए बनवाए गए थे। उसने आर्यांश से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, पर आर्यांश दीवा के साथ था और उसने सार्थक का कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही उसके मैसेज चेक किए। सार्थक ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था, तो वहीं समीक्षा बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। वो जल्दी से पृथ्वी के पास बढ़कर बोली, मैं जानती हूँ आर्यांश ने जो गलती की है और वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर वो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा दे रहे हैं इसे। जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत पहले तुम दोनों को कर देना चाहिए था, जब ये 5 साल पहले एक लड़की के मरने पर बुरी तरह पागल हो गया था। मुझे लगा संभल गया है,
लेकिन वो पागलपन वक्त के साथ इस हद तक बढ़ गया था इसका अंदाजा नहीं था। किसी को मेरे फैसले से दिक्कत है तो वो भी यहां से जा सकता है, पृथ्वी कपूर ने दांत पीसते हुए कहा। समीक्षा उन्हें जवाब देना चाहती थी लेकिन मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे सिर हिलाते हुए उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। वो पृथ्वी की बात से पूरी तरह सहमत थे। साइन करो आर्यांश, ताकि आज के बाद तुम इन पैसों के दम पर किसी को मजबूर ना कर सको, पृथ्वी ने आर्यांश की तरफ देखकर कहा। आर्यांश ने हां में सिर हिलाया और बिना सोचे समझे उन पर साइन कर दिए थे। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। आर्यांश वहां से जाने को हुआ तभी पृथ्वी ने पीछे से कहा, रुको यहीं, तुम्हारी सजा भी अधूरी है, पूरी बात सुनकर जाओ। अब क्या बाकी रह गया है, मैंने साइन कर दिए हैं और अब आप मुझसे मेरा कुछ छीन नहीं सकते हैं, आर्यांश ने पृथ्वी की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा। अगर दीवा के लिए उसे कपूर इंटरनेशनल्स के सीईओ की पोजीशन छोड़नी पड़ रही थी तो आर्यांश को वो कीमत ना के बराबर लग रही थी। वैसे भी कपूर इंटरनेशनल्स के अलावा उसके पास काफी कुछ था जो उसकी और दीवा के आराम से रहने के लिए काफी था। अभी तो आर्यांश को एक झटका लगा है, दूसरा बड़ा झटका लगना अभी बाकी है और क्या पता पृथ्वी कपूर जिस तरह गुस्से में आए आर्यांश कुछ भी करने के लायक न रहे। वैसे उसे बिल्कुल सही सजा मिली है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।